परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदना करते हुए समाज का मुख्य केंद्र बिंदु ज्ञान है। यदि हमें ज्ञान हो तो हम कहीं धोखा नहीं खाएंगे, और ज्ञान हो तो हम किसी को धोखा देंगे भी नहीं, क्योंकि धोखा वह खाता है जो अज्ञानी होता है। आगे तक उसे रास्ते पता नहीं होते हैं, इसलिए रास्ते भटक जाता है, तो वह रास्ते का अज्ञान हुआ। और यदि रास्ते का ज्ञान है तो हम जानते हैं कि गलत रास्ता बतलाने से कष्ट होता है, इसलिए हम गलत किसी को बतला भी नहीं सकते। इसलिए ज्ञान हमेशा व्यक्ति का बचाव करता है, और यदि अल्प ज्ञान हो तो वह भयावह जरूर है, क्योंकि वह अपनी अज्ञानता स्वीकार करने नहीं देता है। तो एक वैद्य जी थे, उनके पास एक व्यक्ति गया ज्ञान लेने के लिए दवा के विषय में। तो उसने कुछ सीखा था, पूछा हमको कितने दिन में सिखाओगे, कहा कि आपको एक वर्ष लगेगा। दूसरा पूछा हम कुछ नहीं जानते, हमको कितने दिन में सिखाओगे, कहा कि बस आपको हम 6 महीने में सिखा देंगे। पूछा एक वर्ष वाले ने कि प्रभु ये तो कुछ नहीं सीखा है तो इसे आप 6 महीना में सिखा दोगे, और मैं इतना सीख के आया हूं तो मुझे कह रहे हो 1 वर्ष लगेगा। कहा कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, तूने जो सीखा है ना वो अधकचरा ज्ञान है, इसलिए उसे अभी भुलाना होगा। तो वो भुलाने में 6 महीने तेरे जाएंगे, और 6 महीने तुझे नई जब हम पृष्ठभूमि देंगे तब तुझे आएगा। उसमें भी तुझे शरणागति स्वीकार करके चलना होगा कि हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं वही सही है। अपने मन से तू इधर उधर करेगा तो भटक जाएगा, जिसे हम दीक्षा कहते हैं, जिसे हम दीक्षा कहते हैं। मतलब गुरु के वाक्यों में जब तक विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी जो कुतर्क बुद्धि है वो कातर का काम करेगी, कैंची का काम करेगी, वो सरौता का कार्य करेगी, वो काटते ही रहेगी, वो नया सीखने के लिए उसमें श्रद्धा आ ही नहीं सकती है। इसलिए भर्तृहरि ने कहा ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। ब्रह्मा जी भी आ जाए ना तो वो जा करके वापस चले जाएंगे, महाराज आप हमारे गुरु हो, हम आपके गुरु नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमेशा शरणागति जब तक नहीं स्वीकार करते हैं तब तक हमें लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए शरणागति का बड़ा फल है। तो अब समाज में यदि ज्ञान की बात करें तो ज्ञान हमें ब्राह्मणों से मिलता है, संतों से मिलता है, और शास्त्रों से मिलता है, ये ज्ञान के स्रोत हैं। जो वेद को धारण करते हैं, जो ज्ञान को धारण करते हैं वो ब्राह्मण हैं। और आज की समस्या बड़ी भयावह है, जो समाज के ब्राह्मण हैं उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं रहा, उनसे शिक्षा लेने लायक बहुत स्थितियां नहीं बनी, क्योंकि उनके आहार विहार बिगड़ गए। ऋषि हमारे जानते थे कि कालांतर में ऐसी समस्या आने वाली है, तो इस काल को जान करके ही वो प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये कुछ भी खाते पीते रहते हैं और कुछ भी कहते रहते हैं, तो क्या इन पर विश्वास किया जाए, इनसे सिद्धि की अपेक्षा रखी जाए, अब तो ये पतित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा देखो, जो सोना है उसे तुम कचड़े में फेंक दो और कचड़े में नाली में पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर जितनी मैल है जम जाएगी, और उसको पुनः यदि तुम निकालोगे और निकाल करके उसे घसोगे रगड़ोगे और तेजाब वगैरह लगा करके अग्नि पर तपाओगे फिर उसमें तेज आएगा कि नहीं आएगा। कहा प्रभु आएगा। तो कहा वही स्थिति समाज में भी है, वह सोना अच्छा है जो सोनी के यहां रगड़ा घसाता रगड़ा जाता है घसता घिसा जाता है तो उसमें हमेशा तेज आता है। वैसे ही जब भक्त लोग होते हैं ब्राह्मण लोग होते हैं अपने गुरुओं के द्वारा हमेशा उनको सूझबूझ दिया जाता है कि ये कार्य तेरा गलत है ऐसे करो वैसे करो, वैसे वो शुद्धि को प्राप्त करते हैं। तो दोष वाले व्यक्ति भी गुरु के सन्निधान में रहने से गुरु के देख रेख में रहने से गुरु के कठोर वचनों से वो सुधर जाते हैं। जैसे खराब सोना सुधरता है। गिरभिर गुरुणाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृतायान्ति नरा महत्वम अलब्ध शाणोत कषणो नृपाणाम न जातु मौलो मणयो वसन्ति। कहा जो शिष्य गुरुओं की कठोर वाणी से तिरस्कृत नहीं हुआ वह ऐसे ही समाज में शोभा नहीं पाता जैसे खान का निकला सोना मुकुट में तुरंत शोभा नहीं प्राप्त करता बल्कि उसके लिए तो उसे रगड़ा जाता है तपाया जाता है ताड़न होता है काटा जाता है पीटा जाता है तब द्रव्यांतरों में पिघला करके फिर उसे आभूषण बनते हैं तब मुकुट बनता है तब कोई धारण करता है तो कहते वाह कहाँ का सोना है किस सोनी ने बनाया है तब सोना देख करके सोनी की पहचान हो जाती है। वैसे ही शिष्य को 50 ग्राम के आसपास और पूरे दिन उपवास रहने का बतलाया है। गाय का मूत्र पियो और गायत्री जप करो नदी के तट पे बैठ करके अथवा सूर्य के ताप में बैठ करके। कृच्छ व्रत का विधान आया है चंद्रायण व्रत का विधान आया है और फिर प्राजापत्य व्रत का विधान आया है। 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके गायत्री जप करके प्राजापत्य व्रत का विधान बतलाया है। ये जप करने के बाद ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है फिर जो उसका पातित्य दोष है जो पतित हो जाता है वह दोष उसकी निवृत्ति हो जाती है ऐसा ऋषियों ने उनको बतलाया। कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारे में ऐसा हुआ और इस तरह घटना घटी। कहा कि देखो प्राचीन काल में जो है ना कश्यप ऋषि की पत्नी विनता जी थी विनता और विनता से गरुण जी की उत्पत्ति हुई तो गरुण जी जो है अंडज कहलाते अंडे से उत्पन्न हुए थे। 4 प्रकार की सृष्टि है अंडज स्वेदज उद्भिज और जरायुज। उसमें जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उसे अंडज कहते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं ना उन्हें स्वेदज कहते हैं कृमि इत्यादि शरीर में वो होते हैं फिर पृथ्वी के गर्भ में भी उद्भिज कहते हैं जो पृथ्वी को फाड़ करके वृक्ष इत्यादि निकलते हैं उन्हें उद्भिज कहते हैं और जरायुज कहते हैं जो योनि से मां के उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो जरायुज अंडज स्वेदज और पिंडज उद्भिज ये 4 प्रकार की सृष्टि है। तो जो विनिता से उत्पन्न गरुण जी थे ये अंडे से उत्पन्न हुए थे इसलिए ये अंडज सृष्टि थी। जैसे ही अंडा फूटा वैसे ही इनको बड़ी तेज भूख लगती है गरुण जी महाराज को। मां से कहते हैं मां मुझे कुछ खिलाओ बड़ी तेज मुझे भूख लगी है। सुधा तुराणाम न भयम न लज्जा जो भूखी भूखा व्यक्ति होता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो भुक्षित हकीम न करो दीपापम। तो माता ने कहा बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है तेरे पिता जो है तपस्या कर रहे हैं नदी तट पर चला जा समुद्र के किनारे वहां गरुण जी वो तेरे इच्छा के अनुसार तुझे आहार बतला देंगे। गरुण जी महाराज कश्यप ऋषि के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैं आपका पुत्र हूं और मेरी माता जी ने आपके पास भेजा है तो, और मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, आप कोई न कोई व्यवस्था कर दीजिए पिताजी। कश्यप जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि यहां से कुछ दूर पर एक कच्छप है और दूसरा जो है वो हाथी है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वहां आप पहुंच जाओ और जाकर के अपनी व्यवस्था कर लोगे, तुम वहां जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। गरुण जी महाराज वहां के लिए चल दिए, गए तो देखा कि वास्तव में वहां दो झगड़ रहे थे, एक कच्छप था एक हाथी था, इन्होंने चोंच से मारना, ऊपर से उड़ करके दोनों को मारना चालू किया और दोनों ही धराशायी हुए, दोनों को लेकर के वहां से वो उड़ गए मांस खाने के लिए कहीं अन्यत्र, क्योंकि जहां हम आहार शिकार करते हैं ना पक्षी, वहां पर हो सकता है उसका कोई संबंधी हो तो वो आ जाए तो आहार ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए आहार एकांत में ग्रहण करना चाहिए। भोजन भजन खजाना नारी सकल पारदा के अधिकारी, अब तो सब बाहर आ गया है, तो सोचा कि एकांत में ले जाकर के, अब इतने बड़े हाथी और कछुए को गरुण जी अपने चोंच में उठा करके लेकर के चल दिए। कुछ दूर गए तो एक जामुन का पेड़ उन्हें दिखाई दिया, सोचे कि इसी पर बैठ करके खा लेता हूं। जैसे ही उस पर बैठना चाहा कि जामुन के पेड़ की जो डाल है वो टूटी, बहुत तेज आवाज हुआ, गरुण जी को होश आया कि अरे राम राम, ये कहीं नीचे गिर जाए तो किसी ब्राह्मण की हत्या न हो जाए, कहीं गाय की हत्या न हो जाए, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उस डाल को भी उठा लिया। अब तीन तीन को लेकर के चलना बड़ा कठिन हुआ, घूमते रहे, घूमते घूमते सोचा कि अब क्या करें, कहां जाए। तब तक भगवान नारायण का जो है दर्शन उन्हें हुआ, जो आए और कहे कि सुनो पक्षीराज, तू गाय और ब्राह्मण का हित चिंतक है, इसलिए तू हमारे इस बांह पर बैठ जा और यहां बैठ करके तू अपना आहार ग्रहण कर लो। कहा क्या बात करते हैं, हमारा भार आप जैसे सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकता है, मेरा भार तो नारायण ही सहन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सहन कर सकता है। ब्राह्मण ने कहा जो नारायण रूप में थे, आप ऐसा करो कि भूखे को भोजन खिलाना पहला धर्म होता है, इसलिए आप हमारे बाहों पर बैठ जाओ, आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप जो करना होगा करना। तो गरुण जी भगवान के भुजाओं पर बैठ जा रहे हैं और बैठा तो देखा कि इनको कोई भी हैरानी नहीं हो रही है, यदि यह सामान्य व्यक्ति होता तो हैरानी होती। तो बैठ करके क्या किया कि जो डाल थी उसको वहीं पर्वत के शिखर पर डाल दिया और दोनों आहार का भक्षण बड़े आराम से किया। उसके बाद पूछा, भोजन करने के पश्चात जब तृप्त हो गए तो गरुण जी ने पूछा कि आप कौन हो, तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए वहां। जब शंख चक्र और गदा पद्म लिए भगवान पुरुषोत्तम पैदा हुए, प्रकट हुए, तो गरुण ने कहा कि प्रभु आज आपने हमारे लिए बड़ा कष्ट सहन किया है, कहा कि गरुण भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ा धर्म है और आपने तो ब्राह्मण और गाय को नहीं मारने का संकल्प लेकर के इतने देर तक आप अपने आहार को लेकर प्रतीक्षा करते रहे, जबकि व्यक्तियों को आहार मिलता है तो वह कुछ भी